हाँ देखो, चलो हम पृष्ठ क्रमांक 37 पर आए हुए हैं। यहाँ जो आखिरी जो पैराग्राफ है वहां तक आए हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं कि यह सिद्धों की स्थापना हम अपने हृदय में भी कर रहे हैं और जो श्रोता है या जो वाचक है, पाठक है, इनके हृदय में भी हम सिद्धों की स्थापना कर रहे हैं। तो वह जो सिद्ध है वह सिद्ध कैसे हैं, तो उसका कथन करते करते उन्होंने ये बताया है कि वे ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। यहाँ तो सिद्ध पर्याय की बात चल रही है, ध्यान में रखना। हाँ, सिद्ध पर्याय जो है वो कैसी है? ध्रुव है, अचल है, अनुपम है और यहाँ बता रहे कि वो अपवर्ग है। अपवर्ग का अर्थ भी हमने देखा था कि जो अन्य तीन प्रकार है, कौन से? धर्म, धर्म अर्थ और काम, इनसे भी ये जुदी ऐसी यह मोक्ष गति है। यहां तक तो हम आए हैं। अब हम पृष्ठ क्रमांक 37 पर आखिरी पैराग्राफ को हम पढ़ने शुरू करेंगे। ल्यो आ सिद्ध भगवान ने वंदन करी ने मांगलिक करियु, आवा सिद्ध भगवान छे एम ध्यान करी ने तेमने वंदर करियु, तेमनो आदर करियो, ओगे ओगे नमो सिद्धानम कहे एम नहीं एम आई कहे छे। ओगे ओगे एटले ऊपर ऊपर, मतलब खाली विदाउट एनी फीलिंग, ऐसे ही वो ओगे ओगे नहीं समझा। देखो क्या होता है, क्या हमारे घर में हमारे पिता की फोटो होती है और पिताजी नहीं है, गुजर गए हैं, तो हम सुबह उठ के उनको नमस्कार करते हैं। तो हमारे घर में जो नौकर है वो भी देखता है कि अरे सेठ उसको नमस्कार करता है, तो वो भी उसको नमस्कार करता है। लेकिन हम उनको क्यों नमस्कार करते हैं? तो हम तो ऐसा मानते हैं कि इनके कारण, इनके निमित्त से आज मैं इस परिस्थिति में आया हूँ, इस स्टेज पे पहुंचा हूँ, इसलिए हमें उनके गुणों की याद आती है कि जिन्होंने हमें हर प्रकार से मदद की है और हमें यह अभी अवस्था प्राप्त हुई है, इसके लिए हम उनके गुण को याद करके उनको नमस्कार करते हैं। और यहाँ कुछ लोग तो नमो सिद्धानम, जैसा हमने देखा था कि नमो सिद्धानम में ये हमने देखा था ना कि वो हमारे बहुत अच्छे काम में आ रहे। कौन? ये जो नासिक वाले भाई, बोले एक घंटा नमो सिद्धानम ऐसा कर रहे हैं। तो नमो सिद्धानम ऐसा जो कर रहे हैं क्यों? क्या आप तो उनका स्वरूप जानते होंगे कि नहीं? तो कहते वो क्या गरज है, तो वो ओगे ओगे यानी ऊपर ऊपर से, मतलब वरवर जिसको कहते हैं मराठी में। तो क्या कहा? ओगे ओगे नमो सिद्धानम कहे एम नहीं कहे। आखा संसार नो एटले 84 ना अवतार नो अभाव थई ने सिद्ध गति उत्पन्न थई छे भाई, ए व्यय विना नो उत्पाद थयो। प्रवचन सार मा आवे छे के सिद्ध भगवान ने संसार नो जे व्यय थयो छे ते उत्पाद विना नो व्यय छे। देखो थोड़ी शांति रखना हो तो, हमने तो द्रव्य का स्वभाव उत्पाद व्यय और ध्रुवता सहित माना है, और यहाँ तो बता रहे हैं कि सिद्ध भगवान ने संसार नो जे व्यय थयो छे ते उत्पाद विना नो व्यय छे। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब वो दोबारा संसार पर्याय में फिर से नहीं आएंगे, इसलिए कहते कि उन्होंने ऐसा व्यय किया है कि अब संसार का उत्पाद नहीं होगा, पर्याय का उत्पाद नहीं होगा, नहीं बता रहे। ख्याल में आया क्या समझा रहे? देखो 84 ना अवतार नो अभाव थईने सिद्ध गति उत्पन्न थई छे। भाई ए व्यय विना नो उत्पाद थयो, प्रवचन सार मां आवे छे के सिद्ध भगवान ने संसार नो जे व्यय थयो छे ते उत्पाद विना नो व्यय छे, संसार नो जे नाश थयो ते हवे उत्पन्न नहीं थाय, यानी संसार दुबारा नहीं आएगी। अब सिद्ध गति भी एक बार प्राप्त हो जाए तो एक दफे उसका उत्पाद हुआ है तो वो व्यय विना का उत्पाद है। क्यों? क्या अभी सिद्ध गति का व्यय होने वाला ही नहीं है, फिर से दोबारा सिद्ध गति, फिर से सिद्ध गति, सिद्ध गति, सिद्ध गति, सिद्ध, कब तक? अनंत काल तक। अभी फिर से वहां से हटकर वह संसार में आ जाए, सिद्ध गति का, सिद्ध मोक्ष अवस्था का व्यय हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये बात हम बता रहे कि प्रवचन सार में हमने पढ़ी है। सिद्ध गति जे उत्पन्न थई छे ते व्यय विना नी उत्पन्न थई छे, आवा सिद्धनी वंदना करी छे। आम सिद्धो ने पोताना आत्मा मा तथा परना आत्मा मा स्थापी ने समय नो एटले सर्व पदार्थनो अथवा जीव पदार्थनो प्रकाशक अमृत प्राभृत नाम नो अर्हत प्रवचन नो अवयव अंश तेने हूँ परिभाषण करूं छूं। यानी यह जो जिनेन्द्र भगवान ने जो बात बताई है, क्या कहा कि अर्हत प्रवचन नो अवयव एटले अंश, यानी यह तो एक पार्ट है, पूरा जो जिनेन्द्र भगवान का जो दिव्य ध्वनि का यह सार है वो तो क्या कह रहे हैं, वो तो उसका अवयव है, अंश है, उसको मैं बताने वाला हूँ। आ समय प्रावृत ए सर्व पदार्थों नो वा जीव पदार्थ नो प्रकाशक छे अने ते अरहत प्रवचन नो अंश केता भगवान श्री अरहंत ना श्रीमुखे थी निकलेली दिव्य ध्वनि एटले वाणी एनो ज अर्थ प्रवचन एनो एक अंश छे। अभी आपने आपको याद होगा कि प्रवचन सार के ऊपर जो कोई गुरुदेव के प्रवचन हिंदी में छपे हैं वो दिव्य ध्वनि सार कहा, यहाँ पर वही बात आ गई ना, निकलेली दिव्य ध्वनि वाणी अथवा प्रवचन तीनों का अर्थ ही कही। जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि को ही प्रवचन कहते हैं, प्रवचन यानी बहुत महत्व विशिष्ट ऐसा जो वचन है, उत्कृष्ट ऐसा जो वचन है उसको प्रवचन कहें। अनादि काल थी उत्पन्न थयेल मारा ने परना मोहना नाश माटे परिभाषण करूं छू। अहीं आचार्य श्री मारा मा एटले पोतामा पण चारित्र मोहनी जे अल्प अस्थिरता छे तेनो तथा परजीवो मा जे मिथ्यात्व रागादी छे तेनो नाश करवानी वात करे छे। मारे पण हजी अल्प मोह छे एम कहे छे। ये तो किस हेतु से यह शास्त्र बना है इसकी भी बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। आचार्य अमृतचंद्राचार्य त्रीजा कलशमा कहूं हतु के आ टीका करता मारा मोहनो नाश थशे, तेओ श्रीनीज आ टीका छे ने कहे छे के मारा ने परना मोहना नाश माटे परिभाषण करूं छू एटले के व्याख्या करूं छू। आ समयसार छे ए अरहत प्रवचन नो अवयव एटले अंश छे। 38 पेज पर नहीं, इनका पुस्तक अलग है, कोई बात नहीं। આ સમયસાર છે એ અરહત પ્રવચનનો અવયવ એટલે અંશ છે. કેવો છે તે અવયવ? અનાદિ નિધન પરમાગમ શબ્દ બ્રહ્મથી પ્રકાશિત છે. ક્યા કહેતે હૈ યહ જો અવયવ હૈ, યાની યહ જો મેં આપકો બાત બતાને જા રહા હું, વહ જિનેન્દ્ર ભગવાન કી હી બાત હૈ, લેકિન પૂરી બાત ન હોતે હુએ આંશિક હૈ, અવયવ હૈ. ઓર વો અવયવ કૈસે હૈ કે જો શબ્દ બ્રહ્મ હૈ. શબ્દ બ્રહ્મ કા અર્થ હો ગયા યહાં દિવ્ય ધ્વનિ કહો, જિસકો હમ શબ્દ બ્રહ્મ કહેંગે, ઉસી કો પરમાગમ કહેંગે. ઓર વો કૈસા હૈ? અનાદિ નિધન હૈ. યાને કોઈ વિશિષ્ટ એક તીર્થંકર સે બતાઈ હુઈ યે બાત નહીં હૈ, બલ્કિ હરેક તીર્થંકર ને વસ્તુ કા સ્વરૂપ હી સમજાયા હૈ, ઇસલે ઉસકો અનાદિ નિધન પરમાગમ કહેતે. એક બાત યાદ આ ગઈ, એ તો ઇસે કોઈ મતલબ નહીં રખતી હૈ, લેકિન અભી આજ વિનોદભાઈ આયે ના તો જરા દેખો. પાલી થાના મેં એક મંદિર બના હૈ, ઉસકા નામ લિખા હૈ આગમ મંદિર. આપને દેખા હોગા, મેં તો ગયા નહીં, મેં તો યે સુની હુઈ બાત હૈ. તો યહાં સોનગઢ મેં એક મંદિર બના, ઉન્હોને ક્યા ક્યા કે કુંદકુંદા આચાર્ય કે જો પાંચ પરમાગમ હૈ ઉનકો ઉત્કીર્ણિત ક્યા બાબા, મતલબ સારે શ્લોક વહાં માર્બલ કે ઉપર ઉત્કીર્ણિત હો ગયે, તો ઉન્હોને ઉસકા નામ પરમાગમ મંદિર રખા. તો ઇનકે ગુસ્સે કા કોઈ કિનારા ના રહા કે હમારા આગમ ઓર તુમ્હારા પરમાગમ. અરે પણ પરમાગમ કા અર્થ ક્યા બતા રહે? જો અનાદિ નિધન હૈ. અબ જો કુંદકુંદ આચાર્યને જો બાત બતાઈ હૈ, વો બાત કા જો કુછ સાર હૈ, વો સાર અનાદિ નિધન હૈ. નહીં કે કુંદકુંદ કી બાત અનાદિ નિધન હૈ, મતલબ ઉનકે શબ્દ નહીં હૈ, પણ શબ્દ મેં સે જો વાચ્ય હૈ, વાચક જો હૈ વો તો શબ્દ હૈ, ઉસકા જો વાચ્ય હૈ, ઉન્હોને જો મતલબ કી બાત બતાઈ હૈ, વો તો જિનેન્દ્ર ભગવાન ને બતાઈ હુઈ બાત કા મર્મ હી ઉસમે હૈ, ઇસલિયે ઉસકો પરમાગમ કા. ખ્યાલ મેં તો ક્યા કહેતે હૈ? અનાદિ નિધન પરમાગમ શબ્દ બ્રહ્મથી પ્રકાશિત છે. કોણ? તો આપણ વો બાત કરે ને અરત પ્રવચન નો અવયવ, યાની એ શાસ્ત્ર સમય પ્રાવૃત. સર્વ પદાર્થો ના સમૂહ ને સાક્ષાત કરનાર કેવળી ભગવાન સર્વજ્ઞની પ્રણિત છે. ક્યાં સમજા રહે કે સર્વજ્ઞ કૈસે હૈ? તો કહેતે હૈ કેવલી ભગવાન હૈ, ઉનકો હમ સર્વજ્ઞ કહે રહે, ઉનકી યે બતાઈ હુઈ બાત હૈ. કેવલી પ્રણિત, યાને કેવલીઓને ઉપદેશ દિયા. તો કૈસે હૈ કેવલી? તો સર્વ પદાર્થો ના સમૂહ ને સાક્ષાત કરના, યાને પ્રત્યક્ષ જો દુનિયા કે યાને વિશ્વ કે સારે પદાર્થો કો જાનતે હૈ, સાક્ષાત યાને પ્રત્યક્ષ જાનતે હૈ, એસે જો કેવલી હૈ, ઉન્હોને બતાયા હુઆ યહ શાસ્ત્ર કા અવયવ હૈ. યે શાસ્ત્ર હો ઉસકા અવયવ હૈ. આમ કહીને આ સમય સારણી પ્રામાણિકતા સિદ્ધ કરે છે. યહાં દેખો, ઇતને ઉચ્ચ કોટિ કે આચાર્ય હૈ, વે ભી એસા નહીં કહેતે કે યે મેં કહે રહા હું, ઓર હમ તો લિખતે કે મેરી દ્રષ્ટિ મેં ભગવાન મહાવીર. નહીં સમજી? અરે ભગવાન, ભગવાન મહાવીર કે દ્રષ્ટિ મેં તો તું આ, તો તેરી દ્રષ્ટિ મેં મહાવીર ક્યા હૈ? તું વો જો સર્વજ્ઞ હૈ, તું તો અલ્પજ્ઞ હૈ, તેરી ક્યા દ્રષ્ટિ હો સકતી ઉનકે પ્રતિ? ખ્યાલ મેં આયા? ક્યા કરે? લેકિન લોક પૈસા ખર્ચા કરકે પડતે. તો કહે રહે હૈ સમય સારની પ્રામાણિકતા સિદ્ધ કરે છે, યાને જો સર્વજ્ઞ ને બાત બતાઈ હૈ વહી બાત ઇસમે હૈ, ઇસલિયે યહ શાસ્ત્ર જો હૈ યા યહ જો પ્રાવૃત હૈ વહ તો પ્રામાણિક હૈ. પ્રામાણિક યાને પ્રમાણ સ્વરૂપ હૈ. સમય સાર બન્યું છે કેમ? અનાદિ પરમાગમ છે એમાંથી બન્યું છે, અને સર્વજ્ઞ ભગવાને તે કહ્યું છે, પ્રણિત કર્યું છે, અને કેવડીઓના નિકટવર્તી સાક્ષાત સાંભળનાર તેમજ પોતે અનુભવ કરનાર, એટલે કે સાંભળીને આનંદ સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ કરનાર એવા શ્રુત કેવળી ગણધરોએ કહેલું હોવાથી પ્રમાણતાને પામેલ છે. દેખો, જો બાત જિનેન્દ્ર ભગવાનને બતાઈ હૈ ઓર જિન્હોને સાક્ષાત વહાં સુની હૈ, और उसके अनुसार अपने स्वभाव का भी जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने जो बताई हुई बात है वो ये है। तो इसमें अप्रामाणिकपना ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, कहाँ जा रहे साहब, वो हमको आज वो क्या एसी लेना है कि एसी, या तो हमारी वो स्टोव की सिगड़ी आती है ना वो लेनी है, तो हम उसके पास जावे तो बोले ये ISI मार्क की है क्या, ये हिंदुस्तान में कोई भी बात होती है वो ISI मार्क होगा क्या, वो क्या है? क्या होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड जो भी होगा, तो वो ऐसा उसका मार्क हुआ तो अच्छी है, प्रामाणिक है। वैसे ये काय की मोहर देख रहे हैं, ये तो जिनेन्द्र भगवान ने बताई हुई मात्र बस, तो फिर आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन क्या करें, ये पंचम काल में तो ऐसे भी कोई गुरु मिले हैं कि जिनेन्द्र भगवान का नाम लेके अंदर भी चाहे जो ठोक रहे, वैसी बात नहीं। यहाँ कह रहे स्वयं ने अनुभव किया है, ऐसी बात नहीं कि खाली उन्होंने बताया और हमने आपको पास ऑन किया। स्वयं ने वह बात सही रूप से है कि नहीं इसका अनुभव लेकर बाद में वो बात बताई है। क्या कहा ऊपर से चौथी, एक दो तीन पांचवी लाइन क्या लिखा, अने सर्वज्ञ भगवान ते कहूं ते प्रणित करियूं छे, अने केवड़ियोना निकटवर्ती साक्षात सांभळनार, और आगे क्या बताए, तेम जो पोते अनुभव करनार, एटले के सांभळी ने आनंद स्वरूप आत्मा ना अनुभव करनार एवा श्रुत केवड़ी कंदर कहेलु होवाथी प्रमाणता ने पामेल छे। अन्यवादियोना आगमनी जेम अल्पज्ञानीनी कल्पना मात्र नथी। अन्यवादियोए एटले जैन परमेश्वर सिवाय बीजाए आगम बनाया छे एम आ नथी। और हम ये बात भी जानते हैं कि जो कुंदकुंदाचार्य थे वे तो भगवान महावीर के बाद अंदाजन 500 वर्ष के बाद हुए, यानी वे जब हुए तब यहाँ तीर्थंकर की उपस्थिति थी नहीं, लेकिन उनके परम सौभाग्य से वो साक्षात विदेह क्षेत्र में गए, और हमारे सौभाग्य के कारण कहो या अपने पुण्य के उदय के कारण उनको ये आगम लिखने के परिणाम हुए, और वो आज तक उपलब्ध भी है हमारे लिए ख्याल में। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो श्रुत केवड़ी कहलो हुआ थी प्रमाणता ने पामेल छे, ये आगे की भी बात हमने पढ़ ली। आ तो अनादि अनंत शब्द ब्रह्म सर्वज्ञ कथित अने श्रुत केवड़ियों तथा साक्षात सांभळनार अने अनुभव करनार एमने कहेलू छे तेथी प्रमाण छे। चार बातें बता दी इसमें, कौन कौन सी देखो, कहते कहते कि आ तो अनादि अनंत शब्द ब्रह्म छे, सर्वज्ञ कथित छे, श्रुत केवड़ियों एक कहेली छे, तथा साक्षात सांभळनार अने अनुभव करनार, इनके कारण यह प्रमाणिक है। बीजाओना आगम तो कल्पित छे, श्वेतांबरो ए तो कल्पित आगम बनाव्या छे, छद्मस्त अल्पज्ञानी ने कल्पना मात्र होय एवा आ आगम नथी। अल्पज्ञानीओना कल्पना मात्र आगमो छे ते बदा अप्रमाण छे। भावार्थ उपरनु प्रवचन गाथा सूत्रमा आचार्य वक्ष्यामी कह्युं छे, तेनो अर्थ वच परिभाषणे, धातु थी एटले परिभाषणे धातु थी परिभाषण कर्यो छे। संस्कृत टीकामा छेल्ला शब्दो छे भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणम उपक्रम्यते, एनो आशय आ प्रमाणे सूचित थाय छे। 14 पूर्वमा ज्ञान प्रवाद नामना पांचमा पूर्वमा 12 वस्तु अधिकार छे, तेमा पन एक एक ना 20-20 प्राभूत अधिकार छे, तेमा दशमा वस्तुमा, ये वस्तु नाम का भी उसका एक पोर्शन है, वो जैसा अधिकार है प्राभूत है ये वैसा एक वस्तु, समय नामनु जे प्राभूत छे तेना मूल सूत्रों ना शब्दों नु ज्ञान तो पेला मोटा आचार्यों ने हतुं, अने तेना अर्थनु ज्ञान आचार्योनी परिपाटी अनुसार श्री कुंदकुंदा आचार्य ने पण हतुं, तेमने समय प्रावृत्तनु परिभाषण कर्युं परिभाषा सूत्र बांध्यू सूत्रनी दश जातिओ कहेवामां आवी छे तेमां एक परिभाषा जाति पण छे। ये परिभाषा भी एक कोई ऐसे ही शास्त्र का प्रकार है। अधिकार ने जे यथास्थान में अर्थ द्वारा सूचवे ते परिभाषा छे। श्री कुंदकुंदा आचार्य समय प्रावृत नु परिभाषण करे छे। एटले समय प्रावृत ना अर्थ ने जे यथास्थान में जणावनारू परिभाषण परिभाषा सूत्र रचे छे। एटले ज्या ज्या जे जे योग्य छे त्या ते प्रमाणे शास्त्रनी रचना करे छे। श्रुत केवड़ीए जे कहेलू तेना अर्थनु ज्ञान श्री कुंदकुंदा आचार्य ने हतुं। आचार्य मंगल अर्थे सिद्ध ने नमस्कार करिया छे। संसारी ने शुद्ध आत्मा साध्य छे अने सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा छे। जे न्यायक भाव छे ते एकलोज आश्रय करवा लायक छे देमा लेवा लायक छे। अभी क्या कह रहे हैं जो न्यायक भाव है। न्यायक भाव का अर्थ क्या है? हाँ राजेश आप बताएंगे न्यायक भाव। मिलिंद भाई आप बताएंगे? हाँ न्यायक यानी जानन देखन स्वभाव वाला ऐसा जो आत्मा। तो हमें तो अन्य आत्मा की तो कोई लेना देना है नहीं। लेना देना है नहीं हमें आश्रय लेने की अपेक्षा से हो। तो हमें आश्रय लेना है तो किसका है? के निज शुद्ध आत्मा का। इसको वो कह रहे हैं कि वो न्यायक भाव। भाव यानी जो न्यायक पणा जिसमें है जानन देखन स्वरूप जिसका है। ऐसा हम कहते हैं ना मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा यानी ज्ञाता पणा जिसमें है वो न्यायक। ख्याल में जानने वाला। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जे न्यायक भाव छे ते एकलोज यानी हमें अगर किसी का आश्रय करना है तो न्यायक भाव का यानी अपने निज शुद्ध स्वभाव का आश्रय तो क्या कह रहे हैं लेना चाहिए। यहां बता रहे कि न्यायक भाव छे ते एकलोज आश्रय करवा लायक छे। एकलोज यानी अन्य किसी का आश्रय करने योग्य कोई है नहीं। अरे यहां तो पंच परमेश्वरी का भी तो आश्रय लेने जाएगा तो तुझे राग उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं और द्वेष भी उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कह रहे मुंबई की बात है भाई। हाँ क्यों अभी हम क्या कर रहे हैं? किसका नाम ले रहे हैं? भगवान का ही नाम ले रहे हैं। कुंदकुंदा आचार्य पांच परमेश्वरी में स्थित है तो हम 7:30 से 8:30 यहां बैठे और मैं समझो 9:30-10 बजे तक बहुत बात करूं तो आपको राग कैसा आएगा? अच्छा आएगा क्या बुरा आएगा? अरे क्या बात करते हो, यहां से हमको कांजूर मार्ग जाने का है। तुम क्या समझते हो कि जाने में 1.5 घंटा लगता है क्या? रोज कौन आएगा फिर तुम ऐसा देरी करेगा तो क्या हो गया? द्वेष आ गया। किसकी बात सुनकर? पंच परमेश्वरी की। ख्याल में आए? नहीं नहीं अपने नीचे भगवान आत्मा की तो और गड़बड़। कम से कम पंच परमेश्वरी का भय से नहीं बाबा, उसके तरफ तो कम से कम अच्छे परिणाम रखो। तो मेरे प्रति कुछ भी रखो तो तुम्हारा क्या जाता है? ख्याल में आए? अरे ये शुभ भाव भी जो है ना। क्या राजेश हम पूजा में बैठते हैं, हमने समझ लो कि 1 घंटे की पूजा रखी होगी और वहां पूजा करने वाले जो आते हैं वो 4-4 घंटे पूजा चलावे तो हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हा? क्या होता है काय को इसको बुलाया? मैंने बोला था इसको मत बुलाना उसको बुला, वो तो अपना जो कहे जरा थोड़ा पैसा दे तो फटाफट खत्म कर देता। तो ये देखो यार हमें खाना पीना खाने का है कि नहीं, क्या बात चल रही? तो हमें तो ऐसा अंदर से होता है। तो ये देखो शुभ परिणाम भी जो है ना अधिक काल टिकते नहीं बेल, लेकिन आत्मा में तुम रममान हो जाओ और अंतरंग में रहने की हमें इच्छा होती, इच्छा ही कहो ना शुरू में तो, और बाद में ऐसा हो जाता है कि अंतरंग में गए सो गए फिर वापस आने का नाम नहीं। जिसने अभी हम देखते ना कि सातिशय अप्रमत दशा में अपने स्वरूप में एकाग्र हुए श्रेणी मांडी केवल ज्ञान लिए निकल गए। और जो कोई समझ लो ऐसे कोई पात्र जीव होगा, पात्र इन द सेंस बहुत क्या कहते हैं, बहुत मतलब शीघ्र मोक्षगामी जीव होगा तो वो तो फटाफट मोक्ष भी दशा प्राप्त कर सकते। देखो ऐसी बात है, लेकिन हमें तो क्या है कि शुभ परिणाम में भी दुख है, इस बात को एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है। क्या हम यहां प्रैक्टिकल देखो ना, हम तो यहां शुभ भाव करने नहीं आए, कर तो शुभ भाव रहे। ये शास्त्र स्वाध्याय है, देव पूजा है, गुरु की उपासना है, उपवास है, सामायिक है आदि, जो कोई शुभ परिणाम कर रहे हैं वो तो हम क्या बात करें। शास्त्र में ये कथन आया हुआ है, वो तो अभी मैं नाम तो नहीं जान रहा हूं, लेकिन आप सब लोगों को याद है, ये हमारी क्या नाम ब्रह्मा को तो जरूर याद होगा। वो एक ऐसा जीव था, उसका नाम शायद आप भी जानेंगे, वो सामायिक करने बैठ गए। उन्होंने नक्की किया था कि पहले के जमाने में तो लाइट नहीं था ना, वो समय समय रहती है, समय समझते हैं आप, हाँ, उसके अंदर वात रहती है और उसमें तेल डालते रोज जलाते हैं, तो ये जब बुझेगा मैं सामायिक से उठूंगा। हाँ, तो बहुत देर हो गई, आया ही नहीं, अपना पति आता ही नहीं, क्या बात है, खाने का टाइम होने को आया, अभी शाम होने को आया, अभी क्या करें। अरे इन्होंने तो अपने स्वरूप में बहुत लीनता की है, चलो अंधेरे में बैठे, कुछ काटे नहीं, कुछ नहीं करके अंदर जाके तेल डाल दिया, वो देखे अरे भगवान, फिर अंदर, फिर जैसे जैसे वो बुझने को आया तो फिर पत्नी आती है, तो उसको तो पानी पानी पानी, और क्या हो गया, पानी में डूब गया, मतलब मर गया। वो तो कथा सबको मालूम है ना, तो उसकी कौन सी गति मिली, पुण्य परिणाम कर रहा था भैया, मेंढक हुआ, तो मेंढक कौन सी गति का जीव है, तीन इंच गति का, शुभ भाव करे और तीन इंच में जावे, अरे नहीं, उस समय भी उसके ऐसे खोटे परिणाम हुए। तो ये तो हमारी घर की बात नहीं ना, ये तो आगम वचन है ना, ख्याल में, लेकिन हम तो ऐसा ही मानते कि नहीं नहीं नहीं, अशुभ भाव खोटा, पाप परिणाम खोटे, कम से कम पुण्य परिणाम तो करने चाहिए कि नहीं, अरे चाहिए वाले तो डूब गया, ये तो परिणाम सहज आते हैं, सहज लाने नहीं पड़ते हैं। अभी आगे जाएंगे हम तो वहां शुभ भाव तो छोड़ो, शुद्ध परिणाम भी सहज आते हैं, ऐसी बात बताएंगे क्या, सहज आएंगे। तू करना चाहेगा तब भी तेरा ध्यान तो स्व तरफ नहीं है, शुद्ध भाव की तरफ है, पर्याय की तरफ है, तुझे शुद्ध भाव होगा ही नहीं, जा, क्योंकि जब तू अपने स्वरूप में एकाग्र होगा तब तुझे अन्य किसी प्रकार के विकल्प ही नहीं रहेंगे कि मुझे शुद्ध भाव लाना है, मुझे शुद्ध भाव लाना है। वो तो एक हुकमचंद भारिल जी बात बताते थे, वो ही बताऊंगा। तो एक ने चाहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र सिखाओ, उस मंत्र को मैं बोलूं तो मुझे सोना ही सोना मिल जाए। अच्छा मैं बताता हूँ, आओ इधर। मुनिराज के पास गया, बोले मैं तुझको मंत्र देता हूँ लेकिन एक शर्त पे दूंगा भैया। क्या 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 बोलो आप, जो भी शर्त बोलो महाराज मैं तैयार हूँ। तो बोलते तू जब जब ये मंत्र बोलेगा बंदर की तुझे याद नहीं आनी चाहिए। अरे उसमें क्या है, बंदर तो हम कभी कितने सालों से उसकी याद नहीं की है, मंत्र बोलते हो कहाँ से याद आने वाली है, घर में क्या। तो शुरू किया शब्द बोलने को, अरे महाराज साहब ने बोला है बंदर को याद नहीं करने का, फिर थोड़ा सा बोला अरे बंदर को याद नहीं करने का, तो मंत्र बोलते बोलते 25 बार तो मंत्र की याद मतलब बंदर की याद करी क्या। तो जिसको बोलना चाहिए था उसकी वो याद कर रहे। तो हमें शुभ भाव नहीं शुद्ध भाव करना है, शुद्ध भाव करना है। तो शुद्ध भाव के यानी पर्याय की तरफ नजर या त्रिकाली स्वभाव की तरफ, ख्याल में आया, ये ऐसी बात है, वह भी सहज परिणाम है। उपदेश देने में कहेंगे हो पर पदार्थों के तरफ से तेरा ध्यान हटाकर अपने स्वरूप में ले जा, ये आदेश जो होगा उपदेश जो होगा तो जीव को ऐसा करना चाहिए, ऐसा तो अवश्य कहेंगे। लेकिन तीन काल की पर्याय जो है वो क्रमबद्ध है, क्रमसर होने वाली है, कोई किसी परिणाम को या परिणतों को आगे पीछे कर सके ऐसा इंद्र राजेंद्र जिनेंद्र भगवान भी उसको आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है, ऐसा सत्य महाव्रतधारी आचार्यों ने लिख के रखा है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। लेकिन जहां जिस अपेक्षा से कहा हो, अभी बताए ना, जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते, भाई हरेक जो सम्यक दृष्टि जीव है या अनेक तीर्थंकर हुए हैं, उनके कथन में कभी अंतर नहीं होगा। अनंत तीर्थंकर कहेंगे तो एक ही बात सच्ची जो होगी वो एक ही बात कहेंगे, और जो अनंत अज्ञानी होंगे वो हरेक अलग अलग बातें बताएंगे। आश्रय लेना है, पर आई तो सिद्ध भगवान लीधा छे, सिद्ध भगवान ने पर्याय मापन शुद्धता प्रकट थई छे। वस्तु तरीके आत्मद्रव्य स्वभावे शुद्ध शुद्ध छे। वस्तु तरीके यानी वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से हम वस्तु यानी द्रव्य, द्रव्य को द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो वस्तु तरीके आत्मद्रव्य यानी द्रव्य तरीके आत्मद्रव्य स्वभावे शुद्ध शुद्ध छे। अहीं शुद्ध आत्मानु स्वरूप कहेवानु प्रयोजन छे, ध्रुव स्वरूप शुद्ध चैतन्य कहेवानु प्रयोजन छे, तेथी तेने नमस्कार करवो उचित छे। कोई इष्टदेव नु नाम लईने नमस्कार केम न करियो, तेनी चर्चा टीकाकारना मंगल पर प्रथम कलशमा करेली छे, ते अहीं पण जाणवी। हम भूल गए हो तो घर में जाके पढ़ लेना, सब बताया उन्होंने प्रथम कलश ने बात। सिद्धों ने सर्व एवो विशेषण आप्यूं, तेथी ते अनंत छे एवो अभिप्राय बताव्यो। ए रीते शुद्ध आत्मा एकज छे एम के नार अन्य मतियो नो व्यवच्छेद करियो, यानी सर्व सिद्धों को हमारा नमस्कार है। इसका अर्थ क्या हो गया कि सिद्ध कितने हैं, एक से जास्ती होंगे तब तो सर्व कहेंगे। हाँ, जैन दर्शन के अनुसार सिद्ध कितने हैं आप जानते हैं? अनंत। ये अनंत सिद्ध है वो कैसा हमें मालूम हुआ? कोई सिद्धांत हमें ख्याल में है क्या? राजेश आप जानते हैं? नलिन भाई नियम से मोक्ष जाते हैं, मोक्ष जाते हैं नहीं क्या, सिद्ध होते हैं। तो ये भी किसमें आगम में दिया हुआ वचन है, और वो इसका अर्थ ही ये हो गया। ये कब से चालू है सब, क्या बात करते हैं? बोलते अनादिकाल से चालू है, तो अनादिकाल से आज कितने 6 महीने और 8 समय हुए, वो भी अनंत हुए, तो कम से कम 608 अनंत हो गए कि नहीं? हाँ शाबाश, ये बात। अभी हमारी प्रॉब्लम पैक हो गई है एकदम फिट। हाँ, वो क्या कहते 608 अनंत, क्या 608 अनंत अनंत हुए, चलो जाओ खुशियां मनाओ बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कह रहे हैं सर्व सिद्धों ने सर्व एवं विशेषण आप्यू, तेथी ते अनंत छे, यानी अभी हम इतना लेते कि मोर देन वन, इतना तो नक्की करो, अनंत की बात छोड़ो। तो कहते तेथी एवो अभिप्राय बतायो छे, एक सुकाम के शुद्ध आत्मा एक छे, तो आपड़े अशुद्ध आत्मा एनी अंदर जाइने भड़िए, यानी एक बड़ा भगवान है क्या, एक महाज्योत है, उसमें बाकी छोटी छोटी ज्योत जाके मिल जावे तो उसको मोक्ष हो जावे, ऐसा तो ये वो विवच्छेद करे इसका। हाँ, मतलब वो मत का खंडन कर दिया। शुद्ध आत्मा एक अच्छे एम केनार अन्य मतियों नो विवच्छेद करियो, वेदांत तो एक सर्वव्यापक आत्मा माने छे पन एम छे नहीं, अनंत अनंत आत्माओ छे एम कही वेदांतो नो व्यवच्छेद करियो। श्रुत केवड़ी शब्द नो अर्थ, श्रुत ने अनादि निधन प्रवाह रूप आगम शब्द ब्रह्म कयूं, अने केवड़ी शब्द ना बे अर्थ करिया, एक सर्वज्ञ अने बीजा परमागम ने जाननार श्रुत केवड़ी। यानी क्या कहते हैं, देखो श्रुत केवली के दो अर्थ बताए उन्होंने। श्रुत केवली को एक तो सर्वज्ञ को श्रुत केवली कहेंगे, और विशेष रूप से तो हमें श्रुत केवली का ये अर्थ विशेष रूप से ख्याल में तो बारंबार आता है, वो कौन सा, कि परमागम ने जानना, परमागम का अर्थ यहाँ लेना कि जो दिव्य ध्वनि आती है तो दिव्य ध्वनि के बाद स्वयं जो गणधर होते हैं वे उनकी आगम रूप रचना करते हैं, यानी वहाँ 11 अंग और 14 पूर्व की यानी 12 द्वादशांग की रचना करते हैं। तो वो 12 अंग की रचना करने वाले अपने शिष्यों को बताएंगे, वो शिष्य को एक दफे बोलने से वो याद हो जावे, तो वो उनको भी। अब पहली बात तो इसमें हम थोड़ा सा ऐसा समझते हैं, पहली शर्त तो ये है कि ये जो श्रुत केवली होंगे उनके तो सम्यक दर्शन होना ही चाहिए। क्यों साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह श्रुत केवली सर्वार्थ सिद्धि में भी है, उन्हें भी 12 अंग का ज्ञान है। आप कैसा कह सकते हो ये? क्योंकि अरे जो 11वें गुण स्थान में पहुंचते हैं ऐसे बहुतांशी जीव जो है वो तो श्रुत के धारी है, मतलब श्रुत ज्ञान जानते हैं, मतलब उनको। और उनका क्या है कि वह जब श्रेणी मान रहे या उतर रहे उस समय अगर उनका मरण हो जाए तो नियम से ऊपर के स्वर्गों में कौन से अनुदिशन और अनुत्तर, तो हम अनुत्तर की बात करेंगे, वहां तो सर्वार्थ सिद्धि आदि विजय विजयंत वगैरह जो है ना 5, तो वहां जाएंगे तो वहां के कई जीव हो सकते हैं कि 12 अंक के ज्ञानी हो, क्योंकि 33 सागर वहां रहेंगे तो क्या बातचीत करेंगे ना? आत्मा के बारे में ही बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो यहां मूल बात क्या है, केवड़ी शब्दना बे अर्थ करिया, एक सर्वज्ञाने बीजे परमागम ने जानना श्रुत केवड़ी। श्रीमद कुंद कुंद आचार्य देव एम कहे छे कि आमे तो सर्वज्ञ परमेश्वर ने श्रुत केवड़ियो कहेलू जे अनादि निधन परमागम तेनु परिभाषण करिए छे, अमे अमारू घरनू कल्पित काई केता नथी तेथी आ ग्रंथ प्रमाण छे। देखो देखो, जिनका हम रोजाना यानी भगवान महावीर के बाद गणधर के बाद जिनका नाम लेते हैं, ऐसे जो कुंद कुंद आचार्य हैं, वे आचार्य कहते हैं कि ये मेरी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, यानी मेरी मन की मनगढ़ंत कल्पना की बात यह नहीं है, यह तो जिनेन्द्र भगवान ने बताई हुई बात है। तो कैसे भाई आपको मालूम है, हम तो अभी फॉरेन रिटर्न है क्या, हम अभी विदेश क्षेत्र से आए हुए, उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन ये तो बहुत जानते हैं सब लोग, ऐसा शिलालेखों में भी लिखा हुआ है कि कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे। तो कहते हैं कल्पित कहीं केता नहीं, यानी अपनी मन की बात नहीं है, तेथी आ ग्रंथ प्रमाण छे, हवे आ ग्रंथ नु अभिधेय शू छे, एटले ध्येय शू छे, शब्दों नो संबंध एनी साथे शू छे, ध्येय आत्मा वाच्य, वाचक एना शब्दों, यानी यहाँ शब्दों के माध्यम से शब्द को यहाँ वाचक कहा, और वो वाचक का वाच्य कौन है, तो ध्येय स्वरूप आत्मा जो है वह उसका वाच्य है। तो क्या कहते हैं, देखो फिर से, ध्येय आत्मा वाच्य, वाचक एना शब्दों, अने प्रयोजन शुद्धात्माना स्वरूपनी प्राप्ति थवी, ये तो प्रकट छे, यानी यही बात इसमें बताई गई है, शुद्धात्मानु स्वरूप अभिधेय छे, यानी इष्ट छे, अभिधेय छे, इष्ट छे कहो या अभिधेय कहो, ये ध्येय स्वरूप है कहो, अखंड आनंद चैतन्य ध्रुव प्रभु परमात्म स्वरूप ये ध्येय बतावानु प्रयोजन छे। यानी यहाँ आत्मा का यहाँ विशेषणों के माध्यम से वर्णन किया है, कैसा है आत्मा, जो ध्येय स्वरूप आत्मा है तो परमात्म स्वरूप ऐसा वह है, कैसा है, प्रभु यानी प्रभुत्व गुण उसमें है, और ध्रुव है चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन सहित है, अनंत सुख स्वरूप यानी आनंद है, और वो कैसा है, अखंड है यानी उस ज्ञान सुख में कभी भी बीच में खंड पड़े ऐसा है नहीं। तो क्या आनंद में भी खंड पड़ता है क्या? तो कहते हैं हाँ, क्योंकि देखो हम तो क्या करते हैं कि भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद तो हमें को ऐसी तृप्ति हो जाती है, चला एक एक और रोटी, नहीं 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 बस बस अभी हमने इतना खाना खा के मजा किया है, तुम और एक रोटी डालोगे तो मेरा सब मजा गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आनंद मानते खाना वाना खाते। तो खाना खा के आनंद माने तो फिर बाद में तुमको दुख होना ही नहीं चाहिए। अरे चार छह घंटे नहीं गए तो दोबारा खाने की इच्छा होती है, तो ये क्या है? ये अखंड आनंद नहीं है, ये तो खंड खंड है। ये पांचों इंद्रियों के विषयों में ये समझ लेना। ये तो हमने खाली रसनेन्द्रिय की बात करी, कई गाना सुनते हैं, कोई क्या बोलते हैं पिक्चर देखते हैं या कोई सीन देखते हैं, तो वो बार बार हमें देखने की आदत कहो या इच्छा होती है कहो, तो यहाँ कह रहे वैसा ये नहीं है। कैसा है? अखंड आनंद स्वरूप है, उस आनंद में कभी खंड न हो जाए ऐसा उसका स्वभाव है। त्रिकाल शुद्ध ध्रुव स्वरूप एक रूप त्रिकाल जेमा पर्यायनो भेदपन्न थी एवा शुद्धात्मानु स्वरूप अभिधेय छे। ये सब आत्मा का वहां वर्णन किया है। छठी गाता मां केशे के न्यायक भाव प्रमत्तपन्न थी अप्रमत्तपन्न थी। ये तो अभी समझ गए ना हम। तो छठी गाथा, अभी छठी जो छह नंबर की जो गाथा आएगी उसमें ऐसा उन्होंने वर्णन किया है कि आत्मा कैसा है, कि आत्मा की बात नहीं करी यहां, न्यायक भाव यानी आत्मा ही है। तो न्यायक भाव कैसा है? तो कहते प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। ये तो अभी जो हम गुणस्थान का अभ्यास करते हैं ना, तो हमको ये ख्याल में आना चाहिए। तो प्रमत्तपन नहीं है यानी किसकी बात की है आप बता पाएंगे? हाँ जी, वो कौन सा है? हाँ, मैं प्रमत्त की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रमत्त यानी किसको किसको लेना इसमें? देखो यहाँ क्या बताते हैं, न्यायक भाव प्रमत्तपन नथी ने अप्रमत्तपन नथी, तो इसमें प्रमत्त में किसको लेना और अप्रमत्त में किसको लेना, किसको यानी कौन से गुणस्थानों को लेना, और आसान बताएं। हाँ साथ से बहुत बढ़िया। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्यों कि गुणस्थान जो है वो पर्यायात्मक है, क्योंकि गुणस्थान बदलते हैं ना, तो अगर वह द्रव्य का स्वभाव होगा तो मतलब स्वभाव का भी बदलेगा क्या? नहीं, तो ये पर्याय है। तो वो पर्याय कैसी है? तो यहाँ प्रमत्त जो शब्द है वह अंत्य दीपक है। अंत्य दीपक का अर्थ क्या हुआ कि जिसके पहले वाले सारे प्रमत्त गुणस्थान ही है। तो देखो दो शब्दों में बताया कि ना मैं प्रमत्त हूँ ना मैं अप्रमत्त हूँ, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा वहां बताया। अभी यहाँ कहते ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, और अप्रमत्त यह भी अवस्था है, दशा है। तो अप्रमत्त अवस्था यानी जहाँ बिल्कुल कोई प्रमाद नहीं है, ये अप्रमत्त जो शब्द है वह आदि दीपक है। तो उसके आगे के सारे गुणस्थान अप्रमत्त वाले हैं। तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं पर्यायात्मक नहीं हूँ, मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, तो मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जो ज्ञायक भाव है छठी गाथा मां केशे कि ज्ञायक भाव प्रमत्तपन नथी अप्रमत्तपन नथी, ए रीते इन्हें शुद्ध कहिए छे तेना वाचक यानी उनकी उसको बताने वाले शब्द आ ग्रंथना समयसार शास्त्रना शब्दो छे अने वाच्य शुद्ध आत्मा छे। ध्येय एटले पकड़वा लायक, आश्रय करवा लायक, अनुकरण करवा लायक, अनुसरण करवा लायक जे ध्रुव छे ते। अभी मुझे एक बात बताना, जो आत्मा है उसमें कितने प्रदेश हैं आप कुछ जानते हैं? रानू आप जानती हैं? हाँ बहुत अच्छा। इनका क्या कहना है किसने सुना है? हाँ जी, इनका क्या कहना है सुना? आत्मा के कितने प्रदेश होंगे? हाँ उसने क्या बताया? वो सही है गलत है? बोलो बोलो, घबराती क्यों है? वो कुछ माइंड करने वाले नहीं, यहीं से बनी की आगे गई है। हाँ उन्होंने गलत बताया कि सही बताया? अरे वो भी तुम गलती से गलत बोलती है। हाँ कोई बात नहीं, तुम घबराना मत, यहाँ कोई माइंड करने वाला नहीं है वो। हाँ बिल्कुल बोलना, इन्होंने गलत कहा। क्या कहा? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। हाँ अब क्या कह रहे हैं? तो ये असंख्यात प्रदेश में उस आत्मा के कोई हाथ या पैर होंगे क्या? नहीं, अभी आप बताना। नहीं तो यहाँ तो कह रहे हैं कि ध्येय एटले पकड़वा लायक, तो आत्मा के कौन से हाथ पैर है कि जिससे वो पकड़ेगा? अभी हमने कौवे को देखा, वो कोई चीज होगी तो पैर में उठा के ले जाता है हा? और आदमी होगा तो हाथ में उठा के, सब्जी वगैरह आप हाथ में उठा के लाते ना। तो अभी ये आत्मा ने पकड़वा लायक सुन, ध्येय एटले पकड़वा लायक, तो पकड़वा लायक आश्रय करवा लायक, यानी हम किसको लटक के आश्रय लेते ऐसा भी नहीं है। चालू बस में बहुत गिरदी हो गया, अपने को खड़ा रहना पड़ा, तो हम किसका आश्रय लेते हैं? वो जो ऊपर कोई जैसा क्या होता है, रॉड होता है या हैंडल होता है, तो उसका आश्रय लेते हैं हम। तो ये आत्मा आश्रय लेवा लायक, पकड़वा लायक, आश्रय करवा लायक, तो इसका अर्थ क्या लेना चाहिए? तो कहते हैं पकड़वा लायक यानी ग्रहण करवा लायक यानी जानने लायक, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव तो जानना जानना और जानना मात्र ही है, जानने के अलावा कुछ नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं जो तू अन्य को जान रहा है उसको छोड़कर यह देह स्वरूप जो निज आत्मा है उसको तू जान, और उसको जान इसको ही दूसरे भाषा में कहा है, वो क्या है कि पकड़वा लायक, हा? क्या कहते हैं, आश्रय करवा लायक, अनुसरण करवा लायक। अनुसरण करना यानी क्या? कि जैसा उसका स्वभाव है वैसा मानना, यही उसका अनुसरण है। हमने कभी माना है कि मैं क्या एक स्वभावी हूँ? हमने तो जाना है कि हम पर को संभालने वाला स्वभावी हूँ, क्यों? तो कह रहे हैं अनुसरण करवा लायक, दो बार दिखाई क्या, अनुकरण है एक, हाँ बराबर, और अनुसरण, अनुकरण यानी वही है और अनुसरण यानी वही है, उसको फॉलो करना। जे ध्रुव छे ते, हे शू छे ते, जे ध्रुव छे ते, आम अनंत केवड़ीए कहू छे, तेना वाचक ग्रंथना शब्दो छे, छे ने शुद्ध आत्मानु स्वरूप ते ध्येय छे, अभिधेय छे, दृष्टिमा लेवा योग्य शुद्ध आत्मा ध्रुव छे, ते सम्यक दर्शन नो विषय छे, सम्यक दर्शन नी पर्याय नो विषय आ छे। यानी क्या कहते हैं, जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमारी श्रद्धा में तो मैं इस स्वरूप ही हूँ ऐसा हमारा श्रद्धान हो तो ही वह काम का है, तो ही तूने उस देह को पकड़ा है। ख्याल में, सम्यक दर्शन है दृष्टि का विषय, दृष्टि का यानी यहाँ हमें श्रद्धा का विषय। अरे हमने आगम के माध्यम से तो जाना जरूर है कि मैं तो ज्ञायक स्वरूप ही हूँ, मैं तो जानन देखन स्वभावी हूँ, मैं तो सुख स्वरूप ही हूँ, लेकिन श्रद्धा ने अभी तक माना नहीं। सम्यक दर्शन नो विषय तेज है, तो यहाँ तो अपने को ऐसा समझा रहे हैं, अरे पहले में पहले तू उसका स्वरूप जानेगा, तो जिसको जानेगा उसका ही तू श्रद्धा करेगा ना, और जो सही जानेगा ऐसे सही स्वरूप का ही तुझे श्रद्धान होगा, तो ही तुझे आत्मानुभूति होनी है। अरे तू जानने में ही क्या बोलते हैं काकू कर रहा है, यानी अभी मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, जानने में ही तकरार करते चलो ना, जानने में ही तू रेडी नहीं है कि अब मेरा स्वभाव कैसा है, वो जान के क्या करने का अपने को। अरे तुझे जान के तो यह जो भाव जो चल रहा है तेरा अनंत काल से, जन्म मरण ऐसा जो तेरा फेरा चल रहा है, वह अनंत काल का ये जो भव का फेरा है उसको कहीं ना कहीं बीच में अटकाव आने के लिए आवश्यक है। देखो देखो ये अपना पंखा चलता हो, यहाँ का बटन बंद हो गया हो, किस कारण से चलता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक लकड़ी लाएंगे उसको बीच में डालेंगे तो तुरंत बंद होगा क्या? अरे वो खड़ा दो चार बार घूमते घूमते रोक देंगे हम उसको। वैसा ही यह सम्यक दर्शन रूपी जो दृष्टि का विषय है, ऐसे आत्मा को हम समझेंगे, आत्मा को हम श्रद्धेंगे, तो वह अपना जो जन्म मरण का फेरा है वो कुछ समय के बाद, कुछ काल के बाद रुकेगा। ख्याल में आए, तो पहले में पहले तो ये तो हम समझे कि ये भाई आगम के माध्यम से ये जो शुद्ध आत्मा की बात बता रहे हैं वो जानना क्यों आवश्यक है कि अगर तुझे अपना हित करना हो, अगर तुझे इस भव का अभाव करना हो तो आगम के माध्यम से हमें अपने स्वभाव का स्वरूप समझना है। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं, दृष्टिमा लेवा योग्य, थर्ड लाइन, दृष्टिमा लेवा योग्य शुद्ध आत्मा ध्रुव छे ते सम्यक दर्शन नो विषय छे, यानी ते श्रद्धा नो विषय छे, सम्यक दर्शन नी पर्याय नो विषय आ छे, बीजी रीते कहिए तो पर्याय व्यवहार छे तेनो विषय निश्चय छे। शुं कहूं, पर्याय छे ए व्यवहार छे अने विषय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य छे, चित विलास मां आवे छे ने के नित्य ने अनित्य जाने छे, एटले के क्षणिक पर्याय ते ध्रुव ने जाने छे, वस्तु अनादि थी आवी छे, द्रव्य अने निर्मल पर्याय बे थता निश्चय नयनो विषय न रह्यो। ये निश्चय नय है ना, तो वहां तो जो निश्चय से जो द्रव्य का स्वभाव है उसको ही कथन करेगा, वह निश्चय नय है। और यहाँ कहते जो पर्याय उसका अवलंबन लेने वाली, उसको ग्रहण करने वाली, उसको जानने वाली पर्याय, ये दोनों मिलके निश्चय नय का विषय नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो पर्याय है वह तो उसका विषय नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, द्रव्य अने निर्मल पर्याय बे थता निश्चय नो विषय न रह्यो, व्यवहार नो विषय थई गयो। खरेखर व्यवहार नो एटले पर्याय नो विषय निश्चय जोईए, पर्याय छे ए व्यवहार छे, भेद छे एनो विषय त्रिकाली ध्रुव ए निश्चय छे। आ अभिधेय ने एटले ध्येय ने जारे पर्याय जाने छे त्यारे अभिधेय थाय छे। इसका अर्थ क्या दिया, त्यारे आ ध्रुव आत्मा छे एम जान्यू अने मान्यू। ध्रुव द्रव्य जे ध्येय तेने ज्ञाननी पर्याय जाने छे, श्रद्धानी पर्याय ध्रुव ने ध्येय बनावीने श्रद्धे छे, त्यारे कहे छे के पर्याय जे भेद अने व्यवहार छे ते अभेद ने जाने छे। ये ख्याल में आ गया, क्या नाम प्रभावेन, यहाँ ये बताते हैं कि हमेशा पर्याय ही त्रिकाली द्रव्य को जानेगी। अभी जो दो बातें बने ना, एक द्रव्य तो आखा है, उसके दो भेद किए, एक पर्याय और एक त्रिकाली ध्रुव, तो ये पर्याय इसको जानती है ऐसा कहेंगे तो वो पर्याय जो है वह तो भेदात्मक कथन किया, तो वो व्यवहार नय का विषय है। ये व्यवहार नय का जो विषय रूप जो पर्याय है वो त्रिकाली ध्रुव ऐसा जो निश्चय द्रव्य है उसको जानती है। अभी हमको बताया था ना पहले कि अनित्य यानी पर्याय हर समय बदलती है, तो अनित्य कोने जाने, नित्य ने जाने छे, यानी त्रिकाली स्वभाव को जानती है। तो ये ऐसा बताना, ये जो वेद से व्यवहार से कहेंगे तो वो तो बात जुदी है। क्या कहें, वाणी बधु बतावे छे, थर्ड लाइन, वाणी बतावे छे के ज्ञान नी पर्याय छे ते जाने छे। वास्तव में क्या है, वाणी तो बता रही है ऐसा कहेंगे, लेकिन वो वाणी को जानने वाली ज्ञान की पर्याय जानती है ऐसा कह रहे हैं। आ तो अनादि सनातन सत्य छे, यानी अनादि से यही सत्य है, ध्येय तो ध्येय छे, पन जारे पर्याय ध्येय ने जाने छे तेने ध्येय बनावे छे त्यारे ध्येय खरेखर थयुं केवाय। अभिधेय एटले शुं, के शुद्ध आत्मा, शास्त्रे कहूं के अभिधेय शुद्ध आत्मा ध्रुव छे, पन कोने के जे जाने एने। अभी ये हमने नियमसार में पढ़ा था, याद है आपको, कि ये कारण परमात्मा किसके पास नहीं है, अरे सबके पास है, तो बोलते किसके पास है ही नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं, बोले नहीं नहीं है, अरे कारण परमात्मा तो उसको जब कहेंगे कि जब कार्य परमात्मा प्रकट होगा। नहीं समझ में आपको, मैं बताऊंगा। मुझे ये बताओ, सबको प्रश्न पूछ रहा हूं, बाप पहले पैदा होता है क्या बेटा? बोलो। अब मेरे को मालूम नहीं, बोले। हाँ बोलो बेटा, खबर नहीं। अब माँ पहले पैदा होती है कि बेटी, पूछो तो मैं जो बताऊं, बोले। हाँ बोलो साहब। हाँ क्या कहते हैं? हाँ। हमने ऐसा थोड़ी पूछा, हमने पूछा कि बाप पहला पैदा होता है क्या बेटा? अरे जब बेटा पैदा होगा तभी उसको बाप कहेंगे। 70 साल का बुढ़ा होगा और उसको बेटा ही नहीं होगा तो उसको कौन बाप कहेगा, मेरे को बताओ? ख्याल में आया? तू वैसा ही यहां समझा रहे। कि कहे शास्त्रे कहूं के अभिधेय शुद्ध आत्मा ध्रुवचे, पण कोने कि जे जाने तेने, कारण परमात्मा किसको कहेंगे? कि जिसने कार्य परमात्मा स्वरूप काम किया है, उसको वो कारण परमात्मा है। नहीं तो है, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है पण तुझे मालूम ही नहीं है मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, तो काय का तू करोड़पति? ख्याल में आया? हाँ जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? बोलो बोलो।
कुछ नहीं मानी होती, बाप बड़ा क्यों बेटा? उम्र किसकी ज्यादा
है? एक ही है। कहने का मतलब ये है कि हमारे कुछ ऐसे उदाहरण कुट पटांग होते हैं, ताकि अभी 8:30 बजने का टाइम आ गया तो नींद खुले तो ठीक है, नहीं तो सब यहीं सो जाएंगे तो हमको। तो इस तरह से यहाँ ये समझा रहे हैं के शास्त्रे कहे लो जे ध्येय रूप जे शुद्ध आत्मा द्रव्य छे ते कोने, तो कहे के जे जाने तेने, तो जो जानता ही नहीं हो उसको दे काएगा, जो श्रद्धा ही नहीं करेगा उसको दे काएगा। ये बात समझा रहे। अभी इसकी बात हम विशेष कल करेंगे। कितना कल? 5 तारीख है।
जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोक